He paid a high ransom for you. Will you go to the city? Jesus will receive you. Do you want to go? Will you go with us? Will you go to heaven? Will you go with us on the pilgrimage to the eternal home there? Dear people, seek salvation. Get ready. Let not one moment be wasted. God in His love calls you so graciously. Oh, how we would like to see all happy. Will you go to the city? Jesus will receive you. Do you want to go? Will you go with us? Will you go to heaven? Will you go on the pilgrimage to the eternal home there? Yes, we are going to heaven according to the Bible. Ye shall be holy, it teaches, through the blood. Therefore, give up the world and avoid all evil. Faithfully receive the gifts purchased for you. Will you go to the city? Jesus will receive you. Do you want to go? Will you go with us? Will you go to heaven? Will you go on the pilgrimage to the eternal home there? Choose you today that place of blessed delight. Do you want to dwell there forever and ever? Just come, the crown of life waits for you in the eternal blessed home of glory. Faith in Jesus alone gives life and leads us into the heavenly stream. Jesus has redeemed us from Satan's power and has transferred us into His eternal kingdom. This stream pours freely and flows from Jesus' side. This stream pours freely and still flows from His side. This delicious stream brings us full salvation. It flows from above and is freely given to us. It shines in heavenly splendor. Where it flows, the night must give way. This stream pours freely and flows from Jesus' side. This stream pours freely and still flows from His side. The Spirit and the Bride say, O come. Let him who thirsts drink freely of the stream. It maketh thy heart like a garden of the Lord, which is rich in fruit. This stream pours freely and flows from Jesus' side. This stream pours freely and still flows from His side. The fruits of the Spirit are love and joy, kindness, goodness, peace and patience, faith, gentleness, chastity. All these are found in those who are children of the Spirit.
भारी हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद के इस कलाम के लिए जो इस वक्त के लिए मुकर्रर है और खुदावंद आप सबको आशीष दे और भाई फ्रैंक को इस्तेमाल करे कि वो हमसे वो बातें करें जो खुदा ने उनसे कही, उनको बताई। इससे पहले कि वो हमसे बात करें, मैं एक वचन से पढ़ना चाहूंगा। एमाल की किताब, एमाल 3:19-22, प्रेरितों के काम 19-22, प्रेरितों के काम 3:19-22, प्रेरितों के काम 3:19-22। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांत के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया। अवश्य है, जरूरी है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि उन सब बातों का सुधार ना हो ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से ही परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। और देखिए, ये जो प्रभु का वचन है भाई ब्रदर फ्रैंक, और भाई फ्रैंक प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि इस अद्भुत और पवित्र वचन के लिए, कलाम के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जो कि बिल्कुल नजदीक है और निकट है हमारे खुदावंद की आमद के लिए, उसके आगमन के लिए। और हम सब जानते हैं के खुदा ने हमारे पास अपना नबी भविष्यवक्ता भेजा जिससे कि वो उस आत्मिक वचन को लेकर, कलाम को लेकर हमारे पास आए। और इससे पहले कि हम आज के वचन में डिटेल से जाएं, मैं सारी की सारी
सारा अभिनंदन और ग्रीटिंग आप सबको देता हूँ, चाहे वो भाई मिलो हो, चाहे वो बाल्टिक सी से हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया से हो, स्विट्जरलैंड से हो, चाहे सारे यूरोप से हो, पेरिस से हो, सब जगह से, जो कनाडा से, यूएसए से, अफ्रीका से और एशिया से, सब जगह से जो ग्रीटिंग्स आई हैं, फ्रॉम लंदन, लंदन से मेरे पास जो ग्रीटिंग्स आई, हम मेरे पास बहुत सारे अभिनंदन आए। और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ कि जो सच्चे ईमानदार और विश्वासी लोग हैं, उन सब लोगों में, सारे संसार में, सारी जुबानों में जो पाए जाते हैं, और जिससे के परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम पूरा हो जाए, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए वो भेजा गया, जिस उद्देश्य से भेजा गया, हमने सुना, हमने देखा, दो खास बातें सुनी आज के वचन में। पहले जिससे कि खुदा उस समय को, परमेश्वर उस समय को बहाल करे, जिससे कि ताजगी दोबारा आ जाए और हम प्रभु का हम प्रभु की आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो चीज, वो जीवन हमारे बीच में पैदा हो जाए, और जो कि प्रभु की दुल्हन के अंदर पाया जाए। और इसी प्रकार से, इसी तरीके से हम इसका, हम उसकी वापसी का भी, हम उसके आने का भी इंतजार कर रहे हैं। और हम जानते हैं, जैसा हमने पढ़ा, कि हमारा प्रभु जो है, हमारा बचाने वाला, हमारा मुक्तिदाता जो है, वो उसको स्वर्ग में तब तक रहना है जब तक के बहाली का सारा काम कंप्लीट ना हो जाए, संपूर्ण ना हो जाए, कामिल ना हो जाए, जैसा कि खुदा ने अपने नबियों और रसूलों के द्वारा कहा। ये इतने जरूरी शब्द हैं, ये वचन के, कलाम के इतने जरूरी शब्द हैं कि ये इसको एक बार नहीं, बल्कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और इसको ना सिर्फ पढ़ना, बल्कि अपने मन में बसाने की जरूरत है। हमारा प्रभु आसमानों में, स्वर्ग में तब तक ठहरा है जब तक के वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार मुताबिक सारी चीजें पूरी ना हो जाएं, बहाल ना हो जाएं। जैसा 2000 साल पहले था कलीसिया में, और खुदावन की सच्ची कलीसिया में जैसा पहले था, और हम इसका इस पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं अपने पूरे दिलों से, कि खुदा ने, परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को नबी के रूप में हमारे पास भेजा। और मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे खुदावन ने क्या कहा, उससे पूछा गया, मत्ती 17 बाब में उससे पूछा गया कि जो पुरखे हैं वो ये कहते हैं कि एलिया का आना तो अवश्य है, जरूरी है। और फिर उसके बाद उनका जवाब आया, मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावन ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो पहले आएगा और सारी चीजों की बहाली करेगा। ना सिर्फ नबी, ना सिर्फ रसूल, पर बल्कि हमारे खुदावन यीशु ने खुद इस बात को कंफर्म किया, और उसने कहा कि इससे पहले कि हमारा खुदावन आ जाए, एक एलिया नबी के समान एक नबी आएगा, जिससे कि वो खुदावन के लोगों को बुलाए, और जैसा कि माउंट कर्मल पर हुआ था, और जैसे कि खुदावन के लोग, उनको एक निश्चय करना पड़ा, उनको एक डिसीजन लेना पड़ा कि क्या वो अपने रास्तों में चलेंगे या वो खुदावन के पास वापस आएंगे। इस ये हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में इस बात को समा के रखें, अपने दिलों में अपने मन में बना के रखें कि खुदावंत के आने से पहले, खुदावंत की आने से पहले ये जो सच्चा कलाम और पाक कलाम है ये सारा का सारा कलाम पेश किया जाएगा। और मैं दो दिनों के बारे में खास तौर पे बताना चाहूंगा जो कि मेरी जिंदगी में खास महत्व रखते हैं। पहले भाई ब्रनम के साथ 11 जून 1933 वाली जो डेट है, जब ये बताया गया उनको कि तुमको एक संदेश, एक मैसेज के साथ, एक कलाम के साथ भेजा गया इससे पहले कि खुदावंत की दूसरी आमद हो। और उसके बाद 11 जून 1958 को डैलस टेक्सास में भाई ब्रनम ने मुझसे कहा कि भाई फ्रैंक, आप जर्मनी को वापस जाएंगे, इस कलाम को लेकर वापस जाएंगे, आप सब मेरी गवाही को अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी बुलाहट को जानते हैं, और मुझे जो आज्ञा दी गई, जो खुदावन ने मुझे दी थी, जिसके लिए खुदावन ने मुझे जिम्मेदार ठहराया इस वक्त के लिए। और जैसे कि भाई ब्रनम ने कहा कि सातवीं सील में आखिर में कि वो संदेश को लेकर आए, जब तक कि उनको जरूरी था, जब तक उनके लिए ठहराया गया था, वो किस कलाम को लेकर चले। और खुदावंद ये जानता है, ये खुदावंद की जिम्मेदारी है, ये जो कलाम है खुदावंद ने मुकर्रर किया कि ये जो कलाम है उसने ठहराया है, जो कलाम है ये उसके बाद भी आगे पहुंचाया जाए और चलता रहे। और ये खुदा का शुक्र है कि हमारे को, हमारा इसके अंदर, हम सच्चे भागीदार हैं, सच्चे हिस्सेदार हैं कि ये इस कलाम में हम शरीक हैं। और हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, एमाल उसका दूसरा बाब 42, एमाल 2:42, प्रेरितों के काम 2:42 को हम पढ़ते हैं। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। देखिए, वो लगे रहे, निरंतर रहे, लौलीन रहे, वो उस शिक्षा में, उस तालीम में वो कायम रहे। भाइयों और बहनों, आज भी ये बात हम पर लागू होती है, जबकि खुदावंद ने हर चीज को बहाल कर दिया, सारी शिक्षा और तालीम, सारा ज्ञान, सारे वादे जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किए, जो उसने कलीसिया को बताए अपने कलाम के अंदर, हम उसको थामे रहते हैं, हम उसको मजबूती से पकड़े और थामे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कहा गया, ये हमसे कहा गया, ये बातें हम पर लागू होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13:47 एमाल 13:47 एमाल 13:47 क्योंकि प्रभु ने ये हमें आज्ञा दी कि मैंने तुझे अन्य जातियों यानी गैर कौमों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये वो मौका था जबकि पौलुस को यहूदियों को ये कहना पड़ा, क्योंकि तुमने खुदावन के कलाम को नहीं माना, नजात के मैसेज को नहीं सुना, इसलिए अब हम, यहूदियों से वो कह रहा है, अब हम अन्य जातियों यानी गैर कामों की तरफ मुड़ते हैं। और इससे बाइबल की वो भविष्यवाणी, वो नबूवत पूरी होती है, क्योंकि
यही प्रभु ने कहा था, ये खुदा ने, खुदावन यीशु ने ऑलरेडी पहले कह दिया था, और खुदावन ने अजाया से पहले कह दिया था, नबी से अजाया 49 में 49 बाब में कह दिया था खुदा ने। इससे पहले कि हम इस बात को पढ़ें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नबी रसूल थे उनको वो हिदायतें, वो हिदायतें उनको कामिल करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए जो खुदावन ने नबियों के द्वारा कहा, वो बातें रसूलों को कायम करनी थी। हम पढ़ते हैं अजाया 49, यशाया 49 और अजाया 49:6, यानी यशाया 49 और 6 को हम पढ़ते हैं। यशाया 49 और 6, उसने ये भी कहा, ये तो हल्की सी बात है कि याकूब के नस्लों, याकूब के गोत्रों का उद्धार करने के लिए, इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। और देखिए प्रभु का, प्रभु की बहुत तारीफ हो, उसकी इतनी हम्द हो, क्योंकि दो, ये दोहरा प्रॉमिस है, ये दोहरा वादा है। हमें कहा गया इसी के अंदर, ये पहले ये बताया गया कि इज़राइल के लिए और फिर गैर कौमों के लिए, कलीसिया के लिए, अलग अलग देशों की जो कलीसिया होगी उसके लिए। और ये प्रभु के लिए काफी नहीं था कि सिर्फ वो इज़राइल को ही वापस बहाल करे, उसके लिए ये भी काफी नहीं है कि यरूशलम, कि यरूशलम एक दफा फिर से, एक बार फिर से जो है इज़राइल की राजधानी, कैपिटल बन गया, और बहुत सारे लाखों लाखों जो यहूदी हैं वो सभी जुबानों, सभी देशों से, सभी मुल्कों से वापस आए। ये भी काफी नहीं है कि यहूदी लोग, कि इज़राइल के लोग अपने अपने वतन में वापस आए, नहीं, उसने दो बातें करी हैं, इसने दो बातों का वादा यहाँ पर किया है। पहला यहूदियों के लिए, और यहूदियों के लिए और इसराइलियों के लिए, और फिर हम देखते हैं अपनी आंखों के आगे कि जब से 1948 से ये शुरुआत हुई थी, ये वादा पूरा हुआ कि खुदावन अपने लोगों को, इसराइलियों को, सारे सारे मुल्कों, सारे दुनिया के कोने कोने से वापस लाया, और जिससे कि इसराइल और इसराइल को एक देश करार कर दिया गया। और इसी प्रकार से, इसी तरह से खुदावंद ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जितने अलग अलग मुल्क हैं, कि खुदावंद के लिए ये काफी नहीं था कि सिर्फ वो इसराइल के लिए ही ये बातें करे, बल्कि उसने कहा कि मैंने तुझे इस बात के लिए भी नियुक्त किया, नॉमिनेट किया, मुकर्रर किया कि तू अलग 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 मुल्कों के अंदर भी, दुनिया के छोर छोर के देशों में भी ये कलाम, ये बातें पहुंचाई जाएं, और सारे देश इसमें इंक्लूडेड हैं, इसमें मिले हुए हैं मेरे भाइयों और बहनों, सारे देशों में, सारे मुल्कों में और सारी जुबानों में। कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज, ऐसा कलाम कभी नहीं गया जिसमें के सारे लोग और सारे जबानों के लोग, उन्होंने उनको, उन तक ये पहुंचाया गया। क्या ये कभी लूथर के टाइम या वेस्ली के टाइम में हुआ? क्या कभी ऐसा पहले हुआ? ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं हुआ, पर हमारे वक्त में ऐसा हुआ। ये वो सच्चाई है, ये वो आत्मिक रूहानी सच्चाई है, ये जो उद्धार का जो वचन है, ये जो कलाम है, ये पहुंचाया गया और ये बताया गया, और ये सारी दुनिया में जब संसार का खात्मा होना होगा उससे पहले ये वचन और प्रभु के आने से पहले, खुदावन के आने से पहले ये छोर छोर में कोने कोने में पहुंचा दिया गया। और हम खुदावन के बड़े आभारी और धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि, और ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि आज ये जो कलाम है, ये दो वचन हैं, जो दो वादे हैं, ये पूरे हो चुके हैं। पहला इज़राइल के लिए और दूसरा जो कलीसिया के लिए जो गैर कौमों से आती है, और वो आशीषित है और वो मुबारक है। जिसकी आंखें खोल दी गई हैं वो मुबारक है, जो ये देख सकता है कि किस वक्त में हम आज हम किस वक्त में आ पहुंचे और रह रहे हैं। हम पढ़ते हैं आगे, हम फिर प्रेरितों के काम अमाल की किताब 13 बाब और 13 और उसकी 48 आयत, अमाल 13:48 और ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, वो ईमान लाए। और यहां बता रहा है इस आयत में कि जब वो गैर कौमों ने ये बात सुनी तो वो खुश हुए, और वहां लिखा है और बताने के लिए लिखा गया है, कंफर्म करने के लिए कि वो सब और जितने अनंत जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए ठहराए गए थे, वो सारे के सारे जो हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा की तरफ से ठहराए गए थे, जिससे कि वो इस संदेश को सुन सकें, इस कलाम को सुन सकें, उन्होंने इसको सुना, इसको ग्रहण किया, इसको माना और इस पर ईमान लाए और अपने सच्चे दिल से इस पर ईमान लाए और उसके लिए आज्ञाकारी रहे और उस हुक्म को मानकर चले। और यही बात हम पर भी लागू होती है जो हम आज के समय में रह रहे हैं। हमने सिर्फ उसको पहचाना नहीं, हमने इस चीज को माना कि खुदावन को पहले से ये सारी चीजें पता थीं, और ये सारी चीजें और उन सब के नाम उसको पहले से पता थे कि जो के मेमने की किताब में उसने पहले से लिख लिए थे, इस दुनिया के बनाने से बेहतर उसने लिख लिए थे। इसी तरीके से ये आज हमारे ऊपर भी ये बात लागू होती है कि जो भी इस चीज के लिए ठहराए गए हैं कि खुदावंत की उस कलीसिया के लिए जो दुल्हन की कलीसिया है, और वो उस चीज को मानते हैं, समझते हैं, और खुदावंत का धन्यवाद हो, और वो खुदावन का सच्चे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, और जो कि उसने संदेश और कलाम हमको पहुंचाया, और जो दूसरे हैं वो उसको उससे दरकिनार रहते हैं, वो उसके पास तक नहीं पहुंच सकते। और देखिए, वो सब जिन्होंने इस चीज को माना और ग्रहण किया, यही वो लोग हैं जो कि अनंत जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए ठहराए गए हैं। उन्होंने ही इसको पहचाना, इसको ग्रहण किया, और वैसे ही ये आज भी है। और अगर आप भी ठहराए गए हैं, उस ब्राइट चर्च के लिए ठहराए गए हैं, तो आप इस चीज का पर ईमान रखेंगे, आप इस मैसेज को जो कि खुदावन की आमद से पहले प्रचार किया जा रहा है, जिसको यकीन करेंगे, इस पर इसको मानेंगे, इसको रिसीव करेंगे। और जैसा कि लिखा है जिनके लिए, और देखिए जैसा लिखा है कलाम में कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयारी बख्श दी। देखिए, हमारे प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी प्रशंसा हो, उसके नाम को जलाल मिले, और जिससे कि यह सच्चा वचन कलाम हमारे ऊपर नाजिल किया गया, बताया गया। अब हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी चार और एक में देखिए
क्या लिखा, पहला तिमोथियुस 4:1 में कहता है, आत्मा स्पष्टता से खास तौर से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। अब देखिए, हमें समझना जरूरी है कि प्रभु क्या कर रहा है, खुदावंद क्या कर रहा है, और जो लोग पुरानी और गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं और इतने लोग जो कि फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो कि अलग अलग गलत अनुवादों में, गलत तर्जुमे के अंदर फंसे हुए हैं और बगैर इस समझ के, जिनकी समझ में सही नहीं है, पर फिर भी आप देखिए इसके ऊपर एक खुदावन के खून खरीदे हुए लोग हैं जो कि आत्मा से बपतिस्मा पाए हैं, रूह से बपतिस्मा पाए हैं, जो खुदावन का रूह है उससे बपतिस्मा पाए हुए हैं और वो सच्चाई में पाए जाते हैं और उनके अंदर कोई गलती और वो नहीं पाई जाती, वो बेदाग हैं और वो खुदावन की उस कलीसिया के शरीक हैं, जिंदा कलीसिया के, जिसमें कि कोई भी गलत तर्जुमा नहीं, कोई भी एक गलत बात समझा शिक्षा नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। जो कलीसिया है खुदावन की कलीसिया में, जो मैसेज है उसके बारे में, खुदावन के कलाम के बारे में, और जो भाई ब्रैनम ने बताया उसके किसी भी एक सब्जेक्ट पर, किसी भी एक बात पर कोई वाद विवाद, कोई उलझन और कोई डाउट नहीं है। उन्होंने खुदावन के कलाम को सुना और इस कलाम को सुना जिसका मुकाशफा दिया गया है और उन्होंने खुदावन के कलाम को अपना सब कुछ समझ लिया, एब्सोल्यूट समझ लिया। और फिर और यही हमारा भी एब्सोल्यूट और हमारे लिए भी ये भी संपूर्ण कलाम है, हमारे लिए भी ये भरपूर है। और जो खुदावन की और जो मेमने की जो दुल्हन है वो आपस में वाद विवाद नहीं करती कि भाई ब्रैनम ने ये कहा या पौलुस ने कहा या पत्रस ने कहा, इस बात में कोई वाद विवाद नहीं, बल्कि जो खुदावन ने कहा कोई भी एक डिस्कशन हम नहीं करते, कोई वाद विवाद बहस हम नहीं करते इस बारे में, जैसा कि कलाम कहता है। खुदावन ने पौलुस को अपना कलाम दिया और वो पवित्र आत्मा से और पाक रूह से के चलाए चला। हम फिर पढ़ते हैं आगे और फिर पहला तिमोथी 4:6 को पढ़ते हैं। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आमीन। ये देखिए ये आयत तो मुझे दी गई है, मैंने इस आयत को अपने लिए समझा, अपने ऊपर लागू किया। मैं चलता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा जैसे खुदावन ने मुझे समझाया और बताया और मेरी अगुवाई करी, और फिर जैसा कि यह जरूरी बताया गया कि किस तरीके से भाई ब्रैनम ने उनको आज्ञा खुदावन से मिली कि उनको कहा गया कि स्विट्जरलैंड ज्यूरिक मत जाना, लेकिन उनको कहा गया कि तुम जेफरसनविल जाना और वहां पर जाकर के इस खुराक को, इस भोजन को इकट्ठा करना। और वही खुदावन, मैं कह सकता हूं, मैं अपने हाथों में अपनी बाइबल उठा कर कह सकता हूं खुदावन के सामने कि उसी खुदावन ने, उसने मुझे बुलाहट दी जिसने के भाई ब्रैनम को बुलाया कि वो उस खुराक को इकट्ठा करके रखें, जमा करें, क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्मानी रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वर्ड से, हर एक उस अल्फाज से जो खुदावन के मुंह से निकलता है। और वही खुदावन और उसी खुदावन ने मुझसे भी ये आज्ञा दी, मुझे हुक्म दिया कि उस
खुराक को जमा किया जाए। और भाई ब्रैनम ने मुझसे कहा, और दिसंबर तीन 1962 को भाई ब्रैनम ने मुझसे कहा कि भाई फ्रैंक, अभी आप इंतजार करें कि जब तक ये पूरा का पूरी की पूरी खुराक जमा ना कर दी जाए, जब तक तुम्हें बाकी ना मिले, जब तक कि इसका पूरा हिस्सा कामिल ना हो जाए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा के लोग गलत शिक्षाओं, झूठी शिक्षाओं के अंदर आज फंस जाएंगे, और वो हमने देखा है। मत्ती 24 के अंदर हम पढ़ते हैं 48 आयत से और 50 आयत तक हम पढ़ते हैं कि वहां हम देखते हैं कि देखिए वहां पर कितना बड़ा मुझे बताया गया। मुझे 19 सितंबर, आप सब जानते हैं, आप वो दिन जानते हैं, वो जगह भी जानते हैं, समय वक्त भी जानते हैं, मेरा दिल कितना ज्यादा मैं संवेदनशील हो जाता हूं। पर जैसा खुदावंद जिंदा है और मैं बाइबल को अपने हाथ में रखता हूं, खुदावंद ने मुझसे कहा, मेरे खादिम, मेरे सेवक, मैंने तुझे इस बात के लिए बुलाया और मुकर्रर किया, जिम्मेदार ठहराया है कि वो जो रूहानी खुराक है, जो मत्ती 24 और 45 से लेके 47 आयत तक के इस खास मौसम के अंदर तुझको मुकर्रर किया है, ये उतना ही सही है जैसे खुदावंद यूं फरमाता है। मैं बार बार कहता हूं, ये वो बात है जो खुदावंद यूं फरमाता है। और देखिए 48 आयत में सेवक के बारे में क्या कहा गया, पहले कोई आएगा, बुलाया जाएगा और उसको आत्मिक बुलाहट होगी और उसके पास वो कलाम होगा, सच्चा कलाम होगा, और फिर उसके बाद में कोई आएगा जिसके पास कोई बुलाहट ही नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं आज, मुझे उसके लिए माफ करें, मैं ये कहता हूं, सारी दुनिया में इस बात को कहता हूं, क्या आपने क्या आपने इस बात को सुना कि किसी भाई ने कोई आत्मिक बुलाहट पुकार को सुना? क्या आपने कभी ऐसा सुना किसी के बारे में? भाई ब्रैनम के बाद, क्या भाई ब्रैनम के प्रभु में जाने से पहले क्या किसी को बुलाया गया? और क्या जो इस बात का दावा करते हैं कि वो आठवें नबी हैं या आठवें सेवक हैं, ये झूठे हैं? ये बिल्कुल झूठ है, उनको पता ही नहीं है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का क्या नियम है, उसके क्या प्लान्स हैं। मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उसने मुझे आत्मिक तौर से बुलाया और उसने मुझे वो ग्रेस दी, वो अनुग्रह दिया, वो फजल दिया, जिससे कि मैं इस रूहानी खुराक को जो भाई ब्रैनम के द्वारा इकट्ठी की गई थी, जोड़ी गई थी, उन सबको बांट सकूं और उन तक भेज सकूं जो खुदावन के लोग सारी दुनिया में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खुदावन यूं फरमाता है, और ये हो रहा है, और ये आज हमारी आंखों के सामने चल रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जैसा कि मत्ती 25 में लिखा है। आप ये देखिए कि आखिरी बात जो उन्होंने कही वो थी खुदावन के खुराक को बांटने के बारे में 24 में, और डायरेक्टली 25 में वो कहता है कि जब वो खुराक दे दी गई सही मौसम में वो दे दी गई, और बाकी के सारे यानी कि जैसे कि आठवां नबी और झूठे नबी और सारी गलत तालीमें जो आ गई, जो कहते हैं कि हम भी नबी हैं, ये देखिए दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं, ये असली और नकली, असल और नकल, ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। और इसी तरीके से हमारे खुदावन के सामने भी था, उसने वो बीज बोया, अच्छा बीज बोया, और उसके बाद शैतान आया और दुश्मन आया और उसने गंदा और झूठा बीज बोया, पर ये पूरा जब हो जाता है और उसके बाद में जब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद जब ये हो जाता है, तब जो खुराक ये सारी दुनिया के अंदर ये खुराक तकसीम की जाती है, बांटी जाती है और भेजी जाती है, और खुदावन के लोगों ने इस फाइनल खुराक को एक्सेप्ट किया, और इसके बाद खुदावन तब उसके बाद कहा जाता है कि तब खुदावन का जो राज है, उसका जो किंगडम है, वो उन अकलमंद कुंवारियों के मानिंद होगा जिन्होंने के खुदावन के इस खालिस कलाम को रिसीव किया और पाया और ग्रहण किया। वो अकलमंद कुंवारियां हैं जिन्होंने के अपने दीपदानों को, अपने मशालों को जलाए रखा और जारी रखा और तैयारी में रहे, और जब जिससे कि जब दुला आता है तो वो तैयार रहते हैं। हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी चार और तीसरी आयत। और क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सच्चाई से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं क्योंकि जो शुरुआत की कलीसिया थी, इब्तिदाई कलीसिया थी, वहां पर एक ही कलीसिया थी, एक शहर में एक ही कलीसिया थी। और आप जानते हैं, मैंने ये पहले भी कहा, मैंने कई बार इसको कहा है, और पेरी ग्रीन के वक्त में भी जब उन्होंने कहा कि ट्यूशन में, उन्होंने बताया ट्यूशन में 8 कलीसियाएं हैं और उसके बाद 9 हो गई, फिर 11 हो गई, और क्या ये सब ये इस चीज की गवाही देता है कि वहां पर कोई आत्मिक बुलाहट, कोई रूहानी बुलाहट थी ही नहीं इन भाइयों के बीच में। और इस वक्त भी बहुत सारी कलीसियाएं नहीं होनी चाहिए, पर सिर्फ एक ही कलीसिया एक ही जगह में, बहुत सारे तो तफिरके हो सकते हैं, डायरेक्शंस हो सकती हैं, शिक्षाएं हो सकती हैं, पर खुदा उनकी कलीसिया तो एक ही है। जो कलीसिया जो सच्चाई के अंदर है, वो एक ही दिशा है, एक ही डायरेक्शन है, और एक ही वो दिशा है, एक ही वो शिक्षा है जो खुदावन के कलाम से मिलती है। और सभी, और जो आप अपने सारे भाइयों से पूछें, जो प्रचारक हैं, खिदमत उनसे पूछें, क्या आपके पास कॉलिंग है, क्या आपको कॉलिंग मिली, क्या आपको बुलाहट मिली, क्या वो कुछ अलग प्रचार कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम तो ब्राइड चर्च को बिलोंग करते हैं, हम तो दुल्हन की कलीसिया को बिलोंग करते हैं। पर देखिए, जो दुल्हन की कलीसिया सिर्फ वो है जो खुदावन के, जो अपने सारे मन से, जो खुदावन ने अपने इस वक्त के लिए मुकर्रर किया, जो इसकी इज्जत करते हैं, जो इसको मानते हैं, वही हैं। और देखिए, अगर कोई आए और कोई आकर कहे कि मैं उस रूहानी बुलाहट में यकीन नहीं करता जो अप्रैल 2 को भाई ब्रैनम को मिली, 1962 में, और मैं इस बात को नहीं माना, और कि मैं इस बात को भी नहीं मानता कि 11 जून 1958 को भाई ब्रनम ने कहा भाई फ्रैंक से कि तुम जर्मनी वापस जाओगे और इस कलाम को लेकर, इस संदेश को लेकर, और अगर वो ये भी कहें कि भाई ब्रन, और अगर वो कहें कि भाई ब्रनम ने ऐसा नहीं कहा दिसंबर में 1962 में, और उन्होंने ये कहा कि भाई ब्रनम से कि तुम रुको, इंतजार करो जब तक कि सारी खुराक तैयार ना हो जाए। सारे भाइयों और बहनों इस बात को समझ ले, जो इस बात को यकीन नहीं करते, इस बात का विश्वास नहीं करते, वो खुदावंद की बातों पर यकीन नहीं करते, वो खुदावंद के कलाम पर यकीन नहीं करते। हम इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं खुदावंद की आने के सच्चाई जो है ये बोली जानी चाहिए, सच्चाई की गवाही दी जानी चाहिए कि केवल एक ही, सिर्फ एक ही दुल्हन है, एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, एक ही कलाम है, एक ही बुलाहट है जो फजल से खुदावन ने दिया इस वक्त के लिए। हम आगे पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं, हम तीतुस की किताब 2 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, तीतुस 2:7-8। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना के रख, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पा सके और लज्जित ना हो। देखिए, पूरी शिक्षा के अंदर और संयम में बना रहे। देखिए, ये उनको बताया गया, ये उनको, उनके लिए बोला गया जिनको खुदावन बुलाता है और भेजता है कि वो शिक्षा देने में और संयम में रहें और भले कामों का नमूना बने रहें। और जो कोई अलग अलग किस्से और कहानियां और अलग अलग अनुवाद बताते रहते हैं और झूठी शिक्षाएं देते रहते हैं, कौन उनको यहाँ पर लागू कर सकता है? वो यहाँ फिट नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता कि उनमें से कोई, मैं नहीं जानता कि किसी ने भी अपनी शिक्षा दी हो। मैं जानता हूँ जिनको बुलाहट मिली वो इस शिक्षा को जानते हैं, वो संयम ही रहते हैं और यही सच्ची शिक्षा को वो देते हैं। हम आगे पढ़ते हैं और अब मैं 8:2-8 को भी मैं पढ़ रहा हूँ, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष ना लगाने पाए और हम लज्जित ना हो। ये जो ये आयत भी ये बता रही है, सब कुछ बता रही है, ये इतनी पावरफुल है, ये इतनी कुव्वत से भरी हुई है। ये नहीं कि वो, ये नहीं कि सिर्फ पौलुस इस चीज के लिए था, खुदावन ने, जिसने कि पौलुस को उस वक्त इस्तेमाल किया, उसने इन बातों को अपने उसका जो साथ काम करने वाला था खादिम, उसने तीतुस के दिमाग में भी, तीतुस को भी ये बात बताई, और फिर हम भी आज इन बातों को उन सब के दिलों में, उन सभी खिदमतगार भाइयों के दिल में उनको बताना चाहते हैं, खादिमों को, सेवकों को बताना चाहते हैं कि इसमें, इस कलाम में कोई गलत अनुवाद और भी कोई इंटरप्रिटेशन और कोई गलत शिक्षा की मिलावट नहीं हो सकती, उसकी कोई जगह नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर के, हम सब हर जगह पर आकर के खुदावन के इस कलाम, खुदावन की फाइनल प्रिपरेशन, खुदावन के आने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें। हम आगे पढ़ते हैं, 1 तिमोथी 2:7, 1 तिमोथी 2:7 को हम पढ़ रहे हैं। 1 तिमोथी 2:7 को हम पढ़ रहे हैं, मैं सच कहता हूं और झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहरा गया। और देखिए पहले पौलुस कुछ बातें बताता है जो रूहानी हैं, और फिर कहता है कि इन चीजों के लिए मैं ठहराया गया हूं जिससे कि ये बातें मैं आगे पहुंचा सकूं, और जिससे और ये बताया गया जाए कि वो उसको ठहराया गया शिक्षक और सिखाने वाला और बताने वाला और प्रचार करने वाला। खुदावन का बड़ा शुक्र हो इन बातों के लिए, क्योंकि खुदावन ने मिनिस्ट्रीज जो हैं अलग अलग सेविकाएं सेवाएं कलीसिया के अंदर निर्धारित करी हैं, नियुक्त करी हैं, मुकर्रर करी हैं। अब देखिए हमें वही रसूलों की शिक्षा और उस नबूवत का कलाम ये बताने की जरूरत है। क्या बताने की जरूरत है? इसके अलावा कुछ नहीं, जो खुदा के कलाम में लिखा है इसके अलावा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। और ये इस चीज ये वो वाचा है, ये वो अहद है जो इसके साथ चलता है। और जैसे कि पॉल ने कहा कि उसको नियुक्त किया गया, उसको ठहराया गया खुदावन की तरफ से, कोई भी किसी भी गिफ्ट को किसी काम को अपने आप नहीं ले सकता, ये उसको दिया जाना चाहिए, ये खुदावन की तरफ से दिया जाना चाहिए। और इसलिए हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम इस चीज को बता सकते हैं, कि हर चीज को हम बता सकते हैं बाइबल के अनुसार, बाइबल के तरीके से, और फिर हम उसको जिससे कि बाद में बाइबल के अनुसार हर चीज बताई जा सके, इससे पहले कि खुदावन की आमद हो। हम पहला थिसलोनियो हम इसको बार बार कह सकते हैं आमीन और आमीन। जब जो पहले सो चुके हैं प्रभु में, हम जो जिंदा हैं, हम जो हम उस भीड़ के हिस्से होंगे, उस झुंड के हिस्से होंगे जिनका रैप्चर होगा, वो झुंड आज तैयारी में है, और वो उस आत्मिक शिक्षा और आत्मिक आदर के साथ में इज्जत के साथ में, जो हमारे समय में हमारे वचन में जो मैसेज दिया गया। और मैं इसको जोर देकर कहना चाहता हूं, और मैं यहाँ सारे पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के बारे में बता रहा हूँ, जो सारे संसार में जो कहते हैं कि उनको आत्मा का, उनको रूह का बपतिस्मा मिला और उनके पास वो गिफ्ट्स आ गई हैं कि वो बीमारों के लिए दुआ करें और ये करें, और जो इन बातों पर ईमान नहीं रखते, जो खुदावन ने आज हमारे लिए ठहराया अपने कलाम में, जो इन बातों पर यकीन नहीं करते इस आखिरी वक्त के कलाम पर, उनके ऊपर लुका 19 और 40 से 45 लागू होती है, कि यीशु ने कहा कि खुदावन रोया, उसको यरूशलेम के ऊपर रोया, यरूशलेम जो क्योंकि तुझे अपने वक्त में ये बता दिया गया कि तेरी शांति के लिए, तेरे सुख के लिए क्या है, पर वो तेरी आंखों से अब हटा लिया गया, तेरी आंखों के पे पर्दा पड़ गया, जिनके लिए खुदा ने वादे किए, जिनके लिए खुदा ने वादे किए और वो आज वो लोग अंधे हो गए जिनके लिए खुदा ने वो वादे किए, प्रॉमिस किए। और देखिए, अब देखिए और देखिए बाद में खुदावन के पास, और फिर वो आएंगे और वो खुदावन कहता है कि वो उस दिन आकर मुझसे कहेंगे, क्या मैंने ये तुम्हारे नाम से नबूवत नहीं करी, लोगों को सिखाया नहीं? और मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे बार बार ये कहने की जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी इस वक्त की कार्यवाही को जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, उस पर ईमान नहीं रखा, जो उसने कहा कि मैं कि खुदावन के उस बड़े और भयंकर दिन के आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। और मेरे भाई और बहनों, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पतरस को जो पवित्र आत्मा मिला, जब वो रूल कुदुस मिला, जब तब उसने पहले सरमन में जो एमाल दो में प्रेरितों के काम 2:20 में जब उसने कहा कि खुदावन का जो दिन है और जो सूरज जो है वो काला हो जाएगा और चंद्रमा जो है, चांद जो है, वो खून के जैसा हो जाएगा, और इससे पहले कि खुदावन का वो महान दिन आए। और पतरस को ये जो कहने की जरूरत थी, पहले सरमन में कहने की जरूरत थी, ये ही बात आज मुझे भी आखिरी सरमन में कहने की जरूरत है। और मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, और ये के पहले, इससे पहले कि फजल का वक्त आज के फजल खत्म हो जाए और उसके बाद ये सूरज का अंधेरा होना और चांद का लाल हो जाना, खून के मानिंद, और सितारों का जमीन पर गिरना, खुदावन ने अपने कलाम को, अपनी शिक्षा को कामिल कर दिया, पूरा कर दिया, और कौन इसको दरकिनार कर सकता है, कौन इसको भूल सकता है, कौन इसे इनकार कर सकता है। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, खुदावन के पास वापस आ जाएं, खुदा मेरे पास नहीं, इंसान की तरफ नहीं, भाई ब्रैनम की तरफ नहीं, या भाई पॉल की तरफ नहीं, हम सब खुदावन के पास वापस आए और कहें प्यारे प्रभु खुदावन, मुझे ये फजल दे कि मैं वो उस चीज का हिस्सा बन जाऊं जो तूने ठहराया है, उसमें मेरा भी हिस्सा हो, मैं उसका हिस्सेदार बन जाऊं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि वो लगातार निरंतर वो फेलोशिप में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में और सहभागिता रखने में, फेलोशिप में बने रहे। हमको भी इसी तरीके से, हमको भी इस फेलोशिप में बने रहना है प्रभु के साथ, और एक दूसरे के साथ भी फेलोशिप में बना रहना है, ये बहुत जरूरी है। और ये पाक रूह की जो फेलोशिप है, इसमें बने रहना है और खुदावन को धन्यवाद करते रहना है और जो उसने हमारे लिए किया है और वो अभी भी कर रहा है और वो करता रहेगा, उसी के नाम को और उसी हमारे प्यारे खुदावन के नाम को, हमारे मुक्ति दादा नजात दहिंद के नाम को, जिसने अपने पाक खून को हमारे लिए बहाया जिससे कि हमारे गुनाहों की माफी हो सके। और वो खून, वो नए अहद का जो खून, नई वाचा का जो खून मेरे भाई और बहनों उसने बहाया, हम वो लोग हैं, हम उस नई वाचा नए अहद के लोग हैं, खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, और हम इस चीज के लिए ठहराए गए हैं कि हम उस दुल्हन की कलीसिया के शरीक रहें। और इसलिए हम इस चीज पर ईमान रखते हैं कि ये सारी वो जो वादे हैं जो खुदावन ने किए हमारे साथ, वो हमारे वक्त में पूरे होते हैं। तो हमारे खुदावन को सारी महिमा और सारी प्रशंसा और सारी शुक्रगुजारी कि इसने हमारी आंखों को खोला और हमारे दिलों को खोला और हमें ये समझने के लिए बताया, हमें ये समझाया कि जो खुदावन ने जो काम खुदावन इस वक्त में कर रहा है अपने वचन को कामिल और पूरा करने के लिए, जब तक ये पूरा कामिल और संपूर्ण ना हो जाए।
और उसी को सारी महिमा हमेशा हमेशा के लिए मिले। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। अब हम खड़े होकर के भाई बहुत जो है प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच्चे हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें फजल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे लोग हैं और तूने हमसे बात करी और इस सुबह तूने हमसे बात करी अपने पाक कलाम से, अद्भुत कलाम। तेरा कलाम ही सच्चाई है और जिंदगी है और आत्मा है। तेरा कलाम वो सारी बातें पूरी करता है जिसके लिए तूने उसको भेजा है। सभी भाइयों को और सभी बहनों को आशीष दे, बरकत दे सारी संसार में जिन्होंने के इस आज के कलाम को सुना, और उनको आशीष दे और सारे संसार और सारे काम को आशीष दे सब बातों में, और जिससे कि हम इस बात को समझ सकें कि तूने आज क्या किया और तू आज क्या कर रहा है। खुदावन खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
No matter how hard the temptation, we have so much more peace victory in the Lord. Victory in the Lord. Yes, complete victory. Hallelujah. I am free. For my faith is the victory. Praise and glory. Hallelujah. Jesus is my all for me. Firmly I trust in the Lord. Gladly stand on His word. Victory in the Lord. Peace now fills my heart. Joy instead of sin is gain. Victory in the Lord. By the enemy, I remain faithful unto death. Victory in the Lord. Complete victory. Hallelujah. I am free, for my faith is the victory. Hallelujah. Jesus is my all for me.